ओम शांति। एक बार फिर से हमारे साथ मिलकर सब बोले ओ शांति। बाप दादा ने हम बच्चों को जो ये महामंत्र दिया है ओम शांति का, वास्तव में देखा जाए तो आज का विषय पूरा इसके अंदर ही समाया हुआ है। हम सभी जीवन जीते हैं और भिन्न भिन्न परिस्थितियां हम बच्चों के सम्मुख आती हैं। कभी कोई परिवार की परिस्थिति, कभी कोई व्यवहार में शरीर की परिस्थिति, बाहर की प्रकृति, अंदर की प्रकृति या स्वभाव, तन मन धन समय संबंधों की परिस्थिति या पेपर कहें तो जब अनेक पेपर आते हैं तो कई बार ये संभावना रहती है कि हमारी अपनी अंदर की स्वस्थिति जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है, डगमग होने की स्थिति में भी कई बार आ जाती है। तो वास्तव में बाबा ने बताया तो ये है कि स्वस्थिति हमारी इतनी शक्तिशाली हो कि बाहर की कोई भी परिस्थिति हो उस पर हम विजय प्राप्त कर लें, जीत प्राप्त कर लें। और जहां जीत होती है वहां क्या होता है? जीत होती है वहां खुशी है, आनंद है, उमंग उल्लास है, आगे बढ़ने की पूरी सदा प्रेरणाएं और इच्छाएं रहती हैं और व्यक्ति का जीवन बहुत ही बस सुखमय, शांतिमय और सहज हो जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही बातों पर विचार करेंगे कि कैसे हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो। पहली बात तो जो आज का गीत ही सुन रहे थे हम सभी अभी क्लास से पहले, मस्तक सिंहासन पे आत्मा जो राजा बैठी है, और फिर जो उसमें मन बुद्धि संस्कार आदि आदि जो बात बताई गई थी, मंत्री है, वजीर है आदि आदि, तो आत्मा राजा यदि अपने इन सब जो ये कर्मेंद्रियां हैं सूक्ष्म, इनको अपने वश में रखती है तो सदा ही उसकी विजय रहती है, जीत रहती है। हम सबके सामने एक रोल मॉडल कौन है जो अभी तक संपूर्ण रीति से कर्मातीत बना है? कौन है? ब्रह्मा बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा। हमें उनके साथ रहने का काफी मौका मिला और केवल इतना ही नहीं, 18 जनवरी को 1969 को जब बाबा अव्यक्त हुए, कर्मातीत फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया, तो उस समय हम मधुबन में ही थे दो दिन, 17 और 18 जनवरी, और बाबा की संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति को भी देखने का मौका मिला। और उस स्थिति से बहुत प्रेरणाएं मिली, उनके भी कुछ अनुभव आपके साथ आज एक्सचेंज करना चाहेंगे, क्योंकि आज हम सब लोग उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या हो, क्या करना चाहिए, उसके लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो स्वस्थिति और परिस्थिति, परिस्थिति माने परिस्थिति, बाहर की स्थिति। स्वस्थिति माने आत्मा की स्थिति, जैसे कहते हैं ना नेचर, प्रकृति शब्द के दो अर्थ हैं, एक है अंदर की नेचर, अंदर का स्वभाव, एक है बाहर की नेचर, यानी ये पांच तत्व, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये तत्व। तो हमारी अंदर की नेचर, अंदर का स्वभाव इतना शक्तिशाली हो जाए कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आए वो हमें हिला ना सके, डगमग ना कर सके। साकार ब्रह्मा बाबा में यही देखने को मिलता था। हमें याद है जब हम लोग बाबा से मिलते थे, मधुबन में भी आपने चित्र देखा होगा, बस सामने गेट से घुसते ही बाबा का ये दो हाथ, आओ मीठे बच्चे, बस बाबा के मुंह से आओ प्यारे बच्चे, ऐसे बाबा के दोनों बाहें फैल जाती थीं और हम लोग जैसे बाबा की बाह में जैसे समा जाते थे। ये तो रहा स्थूल, लेकिन सूक्ष्म क्या होता था कि जैसे ही बाबा की दृष्टि मिलती थी, बाबा का स्पर्श मिला, हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, देह का भान बिल्कुल भूल जाता था। कुछ क्षण उस स्थिति का बहुत ही अलौकिक सुखद अनुभव करते थे, उसके बाद बाबा का ऐसे थोड़ा थपथपाना, जैसे फिर से देह में लाने का प्रयास। कोई आत्मा देह छोड़ती नहीं है, लेकिन देह भान से इतनी आत्मा न्यारी हो जाती थी, विदेही हो जाती थी, कि फिर बाबा ऐसे थपथपा के लाते थे, हम सब फिर देह में अपने को अनुभव करके फिर बाबा टोली खिलाना, हालचाल पूछना, एक जाता था दूसरा आता था फिर तीसरा, इस तरह हर एक को ये अनुभव होता था विदेही स्थिति का। ये इस बात का प्रमाण है कि स्वस्थिति बाबा की इतनी शक्तिशाली बाबा ने बना ली थी कि न केवल अपनी ही परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते थे, बल्कि दूसरा जो कोई भी सम्मुख आता था उसको भी उस परिस्थिति को भुला करके उसे भी अपनी स्वस्थिति में स्थित करा देते थे। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहता है, एक तो कि हमारी अपनी स्वस्थिति ऐसी बने। लेकिन बाबा ने कैसे बनाई ये स्थिति? बाबा भी साधारण परिवार वाला था, घर गृहस्थी वाला, बाबा के भी पांच बच्चे थे, दो पुत्र तीन पुत्रियां, हीरे जवाहरात का व्यापारी, नौकरी धंधा करने वाला, सब कुछ जैसे लौकिक होते हैं सब बाबा ने किया। लेकिन जब बाबा को ये ज्ञान हुआ तो बस बाबा ने रियलाइज किया, बल्कि उस स्थिति ज्ञान से कुछ वर्ष पहले से ही बाबा कुछ एकांत प्रिय हो गए और बाबा को जैसे ये होता था, मंथन में, विचार सागर मंथन में डूब जाते थे और बाबा को ऐसा अनुभव होता था कि मैं चाहता तो हूँ लेकिन फिर भी मेरा मन जो है बार बार भाग जाता है। मन बड़ा चंचल है, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं, क्या करें, मन बड़ा चंचल है, चाहते तो नहीं हम ये करना लेकिन मन भाग जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता। हम ये शब्द बोलना तो नहीं चाहते, ये शब्द मुंह से निकल जाते हैं, ये कर्म हो जाते हैं, तो मन के ऊपर सारा दोष देते थे। तो बाबा को भी, बाबा भी संसार में था, बाबा को भी ये अनुभव होता था। तो बाबा ने क्या करा, मन को पत्र लिखा। आपने सुना होगा पहले यहाँ पर बहुत दो डायरियां थी, एक डायरी में बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या लिखा बाबा ने? हम सभी का भी ये अनुभव है कि हम जितना चाहते हैं मन हमारा वश में रहे उतना नहीं रहता है, मन चला जाता है। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री बलशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया और तू जहां जहां कहता रहा, भागता रहा, मैं भी तेरे पीछे पीछे राजा होकर तुझ मंत्री के वश में हो गया, तेरे पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में, सोमान में स्थित हो गया हूँ और हो रहा हूँ, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बाबा ने मन को ऑर्डर किया, न कि परवश होकर, जैसे संसार वाले कह देते हैं क्या करें मन बड़ा चंचल है भाग जाता है, नहीं, मन को ऑर्डर किया तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी ऑर्डर किया कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो इस रीति से बाबा ने मन को ऑर्डर किया, बुद्धि को ऑर्डर किया, संस्कार को ऑर्डर किया, और फिर बस सदा ये बाबा के कंट्रोल में रहे। लेकिन चाहते तो हम भी हैं, हम भी कहते हैं मन को, हे मन तू मत भाग, हे मन कभी मानो मन बड़ा बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे अंदर समाने की शक्ति आए, मन को ऑर्डर भी करते हैं लेकिन फिर भी समाने की शक्ति नहीं आती है, पूरी कुछ सेकंड मन के व्यर्थ संकल्पों को रोकते हैं, फिर संकल्प चल पड़ते हैं, फिर मन को खींच कर लाते हैं, फिर थोड़ा समय रहा फिर मन भाग जाता है। इसलिए इसके लिए बाबा ने कहा स्वस्थिति शक्तिशाली बनाए, उसके लिए क्या करें, पहले अपने को हम सोमान की सीट पर सेट करें। बाबा ने अनेक अनेक सोमान दिए हैं, अभी भी हाल ही में बाबा ने कितने ऊंचे सोमान दिए हैं, बस भगवान की छत्र छाया के नीचे बैठा हूँ, भगवान की हजार भुजाएं मेरी रक्षा कर रही हैं, बाबा की इतनी अनन्य शक्ति मिल रही है, बस मैं आत्मा उस शक्ति में स्नान, जो इतने सारे अनेकानेक सोमान दिए हैं, उस सोमान में जब हम स्थित होकर के मन को ऑर्डर करेंगे, मन हमारी बात को तुरंत मान लेगा। लौकिक में भी कोई अगर बड़ा आदमी होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी हो, बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो, अगर अपनी सीट पर नहीं होता, मानो रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। जब तक वो अपनी सीट पर है सब उसकी बात मानते हैं, उसका ऑर्डर मानते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो गया, चला गया, ट्रांसफर हो गया, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। ऐसी हम सोमान की सीट पर स्थित हुए बिना, उन सोमानों की स्मृति लाए बिना, और तब मन को ऑर्डर करते हैं तो मन हमारी बात नहीं मानता। तो इसलिए एक तो स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए एक हम ये करें कि जब भी हम चाहते हैं मन बुद्धि ये सब हमारे वश में रहें, ये इसके लिए हम पहले सोमानों को काफी समय तक याद करें, उन सोमानों का अनुभव करें, बाबा की छत्र छाया का, बाबा की सहस्त्र भुजाओं का, उन सब का अनुभव करते हुए उसके बाद सीट पर सेट होके जब मन को ऑर्डर करेंगे, आप देखेंगे जिस शक्ति का भी हम आवाहन करेंगे वो शक्ति तुरंत दौड़ी आएगी और हमारे वश में रहेगी, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। एक तो बाबा ने ये दिखाया, पर बाबा भी कैसे अनुभव करता था इस चीज को, एक सेकंड में परिस्थिति को देखो, बाबा की इतनी उम्र थी, बाबा को कई बार खांसी भी बहुत आती थी, साकार टेप जिन्होंने सुनी होगी ब्रह्मा बाबा की, कई बार बीच बीच में खांसी किया, बाबा हंसी में कहते थे ये खांसी ये कौन है, ये मेरी सखी है, मैं शिव बाबा को कहता हूँ बाबा मेरा इस सखी से पीछा छुड़ाओ, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, तो बाबा क्या कहते थे, शिव बाबा बच्चे ये तो तुम्हारा अपना कर्म भोग है, जो जो कर्मों का हिसाब जिसका है उसको वो खुद चुकतू करना है, बाबा इसमें तुम्हारे साथ कोई कंसेशन नहीं कर सकता, अगर बाबा तुम्हारे साथ करे तो बाबा को तो सभी बच्चे हैं सभी के साथ कंसेशन करना पड़ेगा। इसलिए इस कोई भी बाहर की परिस्थिति, खांसी है कोई भी बाहर की परिस्थिति, उसको अपनी स्वस्थिति से करो। और हम देखते थे बाबा को कभी कभी खांसी आती थी, और हिस्ट्री हॉल में आप लोग गए होंगे, देखा होगा हिस्ट्री हॉल में तीन संदली पड़ी हैं, बाबा एक संदली पर बैठते थे, मामा एक संदली पर इधर लेफ्ट साइड में, और बीच की संदली खाली रहती थी। जब भी बच्चे आते थे, आके अपना अनुभव सुनाते थे, परिचय देते थे, अपना क्या पुरुषार्थ करेंगे, उस पुरुषार्थ के दृढ़ संकल्प लेके जाते थे बाबा के सामने, और फिर वहाँ बैठ के अनुभव सुनाया करते थे। तो बाबा को कई बार देखा, जब खांसी आती थी हमें लगता था ओहो बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, कई बार आंखें भी जैसे नम हो जाती थी गीली, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा के पास ही यहाँ ट्रांसलाइट का चित्र रखा हुआ था, श्री कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का, बाबा दूसरे ही क्षण कहते थे ओ बच्चे देखो कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, आज तो देखो ये पुराना शरीर है, अनेक जन्मों का कर्म भोग का हिसाब किताब है, ये खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन कल जाके बाबा ऐसा बनेगा विष्णु कृष्ण, उस नई दुनिया में कोई भी न शारीरिक व्याधि होगी न बाहर का व्याधि, कैसी दुनिया होगी, और उस दुनिया का वर्णन बाबा बस करते थे। और बस जैसे ही बाबा अपनी स्वस्थिति में स्थित होते थे, एकदम खांसी जैसे छूमंतर वो परिस्थिति एकदम भाग जाती थी, ऐसे भाग जाती थी, और फिर बाबा अपनी उसी स्थिति में, ओ कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, नया शरीर होगा, कोई तकलीफ नहीं। बच्चों, तुम बच्चों को भी बहुत बहुत खुशी में रहना चाहिए, कोई भी अगर बाहर की तकलीफ आई, अपने अंदर की स्थिति इतनी शक्तिशाली बना लो कि बाहर की परिस्थिति आप पर वार न कर सके। और वो प्रत्यक्ष देखने को मिलता था, और बस बाबा कहां कुछ सेकंड पहले ऐसी लगता था बहुत तकलीफ हो रही है, फिर बाबा बस बच्चे तुम्हें भी खुशी में नाचना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए, जानते हैं ना कैसे खग्गी मारते हैं, बाबा कई बार करके दिखाते, बच्चे मालूम है कैसे, ऐसे बस खुशी में, ओ कल जाके मैं ऐसा बनूंगी, ओ बाबा ऐसा खुशी में ना, बस इतनी आयु लेकिन चेहरे पर वही खुशी की लहर, आनंद की लहर, यह है स्वस्थिति पर, प्रैक्टिकल में एकदम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेना। बस कोई भी हमारे सामने तन मान धन समय कोई भी आए परिस्थिति, हम अपनी स्वस्थिति को एक तो इतना शक्तिशाली बना ले। और क्या करते थे हम बाबा का देखा, क्योंकि बाबा ही हमारे सामने रोल मॉडल, बाबा की ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखी, और ऐसी स्थिति में हम सबको भी स्थित होना है। दूसरा, एक भारतीय संस्कृति ने हमें बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं कई चीजें, और होता क्या है, हम सब लोग रहते हैं दुनिया में ही रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बाबा ने बताया है कि ऐसे तो अनेक पेपर बच्चों के सामने आएंगे, बताया है भाई विपरीत पर परिस्थितियों का पेपर आएगा, ऐसे है जो पांच तत्वों का पेपर आएगा, पुराने संस्कारों का, संभावों का, पुराने इन सब के पेपर आएंगे, बस कुछ अशुद्ध आत्माओं के, भटकती आत्माओं के, आदि आदि बाबा ने अनेका अनेक पेपर बताए। लेकिन उन पेपर्स में भी बाबा ने वर्तमान समय के हिसाब से दो पेपर विशेष बताए हैं, और जब पेपर आता है तभी तो हमारी स्वस्थिति डगमग होती है, तभी तो आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त करें। तो कौन से दो पेपर बाबा ने बताए हैं? एक पेपर तो बाबा ने बताया है कि शरीर का पेपर, क्योंकि जितने भी हमारे 63 जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब है, वो सारे के सारे हमें यहाँ ही चुकतू करके जाना है, और उसके लिए बाबा ने बताया योग के द्वारा कर सकते हो, योग रोग भोग इन सब के द्वारा। और कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था, अगर शरीर का कोई हिसाब किताब आता है, कोई तकलीफ बहुत होती है, घबराना नहीं चाहिए, यही समझना चाहिए हिसाब किताब यहाँ चुकतू हो रहा है, और हम धर्मराजपुरी से बस टाटा करते हुए निकल जाएंगे, धर्मराज के सजाओं का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। कितनी अच्छी विधि बाबा ने बताई हुई है। तो इसीलिए एक पेपर ये शरीर का, ये ना समझे कि अरे मेरा तो युवान शरीर है, कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं, नहीं, ये तो अनेक अनेक जन्मों का उसके कर्मों को सेटल करने का एक साधन है। तो इसमें अगर किसी भी रीति से कोई भी तकलीफ अगर होती है, बहुत खुशी खुशी उसे कि ये हमारे पुराने विकर्म भस्म हो रहे हैं। और इसके लिए बाबा क्या विधि अपनाते थे, जैसे ये बताया ना खांसी का था, ऐसे ही बाबा को एक अभ्यास बहुत बड़ा पक्का था, करा था बाबा ने, क्या क्या कि जब चाहे देह में आना, जब चाहे देह से न्यारा हो जाना। जैसे अभी दादियों से मिलने का कभी टाइम होता है ना भाई, 10 बजे बम्बई की पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे दिल्ली की, 11 बजे कलकत्ता की, आदि आदि टाइम दिया होता था। और बाबा ऊपर पांडव भवन में जब रहते थे तब तो वही था, तो वहां पर या तो बाबा अपनी झोपड़ी में मिलते थे या अपने कमरे में, जो जो बाबा का कमरा तब तो बहुत छोटा था, उतना ही था जहां तक पलंग पड़ा हुआ है बस, उतना नीचे पीछे का तो बाद में बढ़ाया, बहुत छोटा, कोई 10x8 का जैसा कमरा था, बहुत ही छोटा। और या फिर हिस्ट्री हॉल में जब बड़ी पार्टी होती थी, बड़ी पार्टी का मतलब उस समय 15-20 लोग भी अगर होते थे तो वो पार्टी बहुत बड़ी मानी जाती थी, तो वहां मिलते थे। तो कई बार टीचर जाती थी, देखती थी बाबा बैठे हैं, हाँ? बस आंख खुली हुई है, और टीचर सामने जाके भी कई बार खड़ी हो जाती थी, लेकिन बाबा अपनी लगन में मगन, आंख खुली है चेतन लेकिन देह से न्यारे। तो टीचर थोड़ी देर बाद कहती थी, बाबा बाबा मैं फलानी जगह से पार्टी लाई हूँ। अच्छा, बाबा को जैसे जर्क सा कभी लगता था, और बाबा कहते थे अच्छा बच्ची पार्टी, आओ लाओ बिठाओ, और इस तरीके से सब बैठते थे। फिर बाबा उनसे हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, गोदी में लेते थे, आदि आदि इस प्रकार से मिलन बाप और बच्चों का कलब पहले वाला, हाँ, मिलन होता था। लेकिन बाबा का देखा कि जैसे बाबा देह में होते भी देह से न्यारे। उसके बाद जब पार्टी पूरी हो जाती थी और दूसरी पार्टी में भी टाइम होता था, फिर बाबा देह से न्यारे हो जाते थे। तो एक ये अभ्यास हम बच्चों को पक्का करना है, अगर हम देह की व्याधियों से, कष्टों से, उनसे अलग रहना चाहते हैं, न्यारा रहना चाहते हैं, कष्ट तो होगा लेकिन उस कष्ट की अनुभूति ना हो, वो दुख हमें एकदम दुखी न कर दे, बाबा की याद भुला न दे, इस कारण से उसके लिए ये आवश्यक है कि हम देह से न्यारा, बस मैं आत्मा इस देह से न्यारा। जब विज्ञान के साधनों में देह से न्यारा करने की शक्ति होती है तो हम आत्माएं तो विज्ञान की रचयिता है, आत्मा विज्ञान तो हमारी रचना है। साइंस में कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं, एनेस्थीसिया दिया, सुन्न कर देते हैं, पर उसके बाद उस शरीर में काटते भी हैं, खून भी निकलता है, लेकिन कोई भी शरीर को अनुभूति नहीं होती, आत्मा को अनुभूति नहीं होती कोई दर्द की। तो देखो, जब विज्ञान में इतनी शक्ति है तो मुझ आत्मा में तो कितनी शक्ति है, मैं तो रचयिता हूँ उस विज्ञान की। इसलिए देह से न्यारा होने का अभ्यास और देह में आने का अभ्यास, अगर ये अभ्यास हमारा जितना होगा तो प्रतिदिन हम एक इस अभ्यास को भी पक्का करते रहे कि बस मैं विदेही हूँ, अशरीरी हूँ, न्यारी हूँ, विदेही, बस ये संकल्प में जितना स्थित होते जाएंगे उतना हम देह से न्यारेपन का अनुभव करेंगे, और फिर जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी हम उससे न्यारे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये एक दूसरा है विधि स्वस्थिति से परिस्थिति पर। दूसरा बाबा ने बताया एक परिवार का पेपर, ये हम बच्चों के सामने, क्योंकि बाबा का परिवार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ेगा, कोई 50-60-70 साल पुराने हैं, कोई इतने महीने पुराने हैं, 10-20 महीने पुराने हैं, कोई और भी नए हैं। तो कई पुरानों में भी कई बार हम कोई कमजोरी की बात देखते हैं तो मन में बड़ा संकल्प चलता है, अरे इनमें भी यही बात, क्रोध, इनमें भी अहंकार। तो जब ऐसी बात देखते हैं तो कई बार हमारी अवस्था डगमग होने का चांस रहता है। तो बाबा ने कहा देखो कभी भी किसी को भी देखो तो एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, तीनों कालों की दृष्टि से देखो। हम उसका केवल वर्तमान समय स्वरूप देखते हैं तो हमें लगता है ये तो बड़ी कमजोर आत्मा है, इसके अंदर तो ये कमजोरी है, ये है, लेकिन नहीं है। बाबा ने बताया है, क्या बात बताई है बाबा ने कि देखो बाबा का लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है, आखिरी बच्चा भी जो है, वो बाबा का चुना हुआ बच्चा है, बाबा का सेलेक्ट किया हुआ बच्चा है, भगवान ने चुना है, वो आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी महान बच्चा है। तो उस नशे में हम रहे कि भगवान ने मुझे चुना है, मैं भगवान का सेलेक्ट किया हुआ बच्चा हूँ, मेरे सामने ये वर्तमान के पद भी बहुत छोटे हैं, मैं तो विश्व महाराजन महारानी आत्मा हूँ। और इस कारण से जब उस नशे में रहते के हम किसी भी आत्मा के तीनों कालों को देखेंगे, केवल वर्तमान काल नहीं, वर्तमान में तो वो किसी कमजोरी की स्थिति से पास हो रहा है, इस कारण से वो क्रोध के वशीभूत है, लोभ के, अहंकार के, कोई ना कोई कमजोरी के वशीभूत है। लेकिन जब हम सोचेंगे नहीं, भगवान ने इसे चुना है और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, उसका सिलेक्शन सदा ठीक है और वर्तमान समय ये उस स्थिति से पास हो रहा है, लेकिन ये वही आत्मा है जो डबल ताजधारी आत्मा सतयुग में थी, महान थी, अभी ये है और फिर बाबा इसे अपनी उसी महान स्थिति में पहुंचाएगा। जब इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो कोई भी आत्मा की हमें कमी कमजोरी नजर नहीं आती और हमें हर आत्मा विशेष और महान लगने लगती है। तो इसलिए सदा हम अपने को देखें। होता क्या है ना, हम अपने को कम देखते हैं, बाबा ने बोला, दूसरे को ज्यादा देखते हैं। मुझे एक दो लाइन की बात याद आ रही है शेर, हम लोग क्या करते रहे हैं सबके लिए कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना, शीशा। तो बस ये है, कमी कमजोरी हमारे अपने अंदर होती है, हमारी दृष्टि में दोष होता है, लेकिन हम समझते हैं आईना देख रहे हैं, हमें अपनी कमी कमजोरी नजर नहीं आती, शीशे में मुंह दिखता है और उसको साफ करते रहते हैं, लेकिन भाई जैसा चेहरा होगा वैसा ही तो दिखेगा। इसीलिए अगर चेहरे पर कोई दाग है तो वो दाग उसमें दिखेगा, वो आईने का तो दोष है नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन अंदर देखते रहें, अपने को देखते रहें, और स्व जितना हम स्व को देखेंगे उतना उतना स्व में परिवर्तन आता जाएगा, स्व स्थिति मजबूत होती जाएगी और परिस्थिति के ऊपर विजय होती जाएगी। कई बार हम कोई प्रॉब्लम आती है हम कहते हैं क्या करें भाई, ये तो माया आ गई, समस्या आ गई, लेकिन नहीं है। विघन में और माया में क्या अंतर है, माया और विघन में? विघन जो है बाहर से आता है, माया अंदर से आती है। बड़ी सूक्ष्म चीज है। मानो कोई आप क्लास जाने के लिए तैयार हुए और बस क्लास जाना है, गुरुवार का दिन है, बड़े उमंग उल्लास में है, जाएंगे, बाहर निकले तो स्कूटर पंचर पाया या कार पंचर हो गई, अब क्या करें, बहुत दूर, इतनी सुबह सुबह कोई रिक्शा भी मिले ना मिले, क्या करें? तो या तो ये परिस्थिति हो जाती है कि उसको सोच के चलो कोई बात नहीं, बाबा को घर में ही याद कर लेते हैं। तो ये अंदर से जैसे माया ने जन्म लेने लगा, माया और कमजोर, विघन आया, लेकिन उस विघन के वशीभूत होके हम माया के वशीभूत होते चले जाते हैं। या फिर यह है कि हम उसका अभ्यास करके, कोई भी करके, उस विघन को पार करके, टेलीफोन के द्वारा मुरली अथवा दूसरे साधनों के द्वारा किसी भी तरह करके पहुंचने का अगर प्रयास करते हैं तो ये विघन के ऊपर हमारी कमजोरी माया ने विजय प्राप्त कर ली, माने हमारी स्वस्थिति ने माया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इसीलिए देखना यह है कि मेरी स्वस्थिति सदा शक्तिशाली रहे। देखो विज्ञान भी हमारी रचना है, विज्ञान ने भी क्या किया, आपने पढ़ा होगा जो अखबार पढ़ते हैं पेपर में और जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किए हैं। बाबा भी हमें क्या बनाता है, माया जीत भी बनाता है, प्रकृति जीत भी बनाता है, बाहर की प्रकृति का जीत। तो विज्ञान ने ना, एक साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, सुना होगा प्रोफेसर एमोटो जापान के हैं, उन्होंने क्या करा, दो गिलास में पानी लिया और एक गिलास को बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए, हे जल आप कितना कल्याणकारी हो, जल ही जीवन है और जल के द्वारा ही पूरा संसार चलता है, मैं आपको नमन करता हूँ, और जल उस गिलास के ऊपर भी बड़े अच्छे अच्छे लेबल लगाए, थैंक यू, आई लव यू, या मदर टेरेसा आदि आदि करके, ऐसे पॉजिटिव। मदर टेरेसा का बड़ा ऊंचा स्थान हम सबके बुद्धि में होता है, क्रिश्चियंस के विशेष करके। और दूसरे गिलास में उसको निगेटिव वाइब्रेशन दिए कि हे जल आप तो कितना विनाशकारी हो, बाढ़ के रूप में, सुनामी के रूप में विनाश करते हो, उसको लेबलिंग भी जो लगाई निगेटिव, आई हेट यू, आई विल किल यू, और हिटलर ऐसा लगा दिया, हिटलर का नाम आते ही मन में उसकी इमेज, बड़ी क्रूअल इमेज आ जाती है। मतलब एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव। अब पानी वही है, एक जैसे समान दूरी पर है और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन, दूसरे गिलास को निगेटिव। और उसके जब क्रिस्टल बनाए गए, बहुत पॉजिटिव वाले के क्रिस्टल, बड़े अच्छे ऑर्नामेंटल शेप के क्रिस्टल थे, उसे बिल्कुल हीरे जवाहरात अष्टकोण वगैरह वाले, षटकोण, बहुत देखने में ही बड़े अच्छे, और जिसको निगेटिव दिए थे वो बड़े विभत्स, डरावने, भयानक, इररेगुलर शेप के। अब पानी वही है, लेकिन हमारे विचारों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, यही बात तो बाबा कहता है, कितने सालों से कहता है। बाबा ने कहा ज्ञान योग के द्वारा हमारे जैसे अपने आप, शरीर के अंदर भी तो 70% से ज्यादा पानी है, तो जैसे हमारे विचार होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दूसरे को हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना के विचार होते हैं, प्रेम के, शांति के, जो आत्मा के सद्गुण हैं, वो सब गुणों से प्रेरित जो विचार होते हैं वो सब पॉजिटिव जैसे विचार हैं, और वो जितने हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए वो विचार रहेंगे तो क्या शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जितना ये विचार निगेटिव हो जाएंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। तो बाहर की परिस्थिति हमारी स्वस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेती है जितना हमारे निगेटिव विचार होते हैं। और इसी बात को हमारी संस्था ने भी कई रीतियों में करा है, ग्राम विकास वालों ने बीज बोते हैं अगर, और वो बीज को भी थोड़ा योगदान दिया, धरनी को भी योगदान दिया, और फिर जो भी सब्जी अनाज निकलता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, स्वरूप में भी बड़ा होता है आदि आदि। तो हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति के तत्वों पर भी, और यही प्रयोग कैट के रूप में, हेल्थ के रूप में भी वो करते हैं, यहाँ पर जो कैट का प्रोग्राम होता है, और उसके अंदर जिनकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो उनको लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा और अपने पॉजिटिव चिंतन के द्वारा हम अनुभव करते हैं, बाबा से लाइट आ रही है, वो लाइट मेरे हृदय के ऊपर या किडनी के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है उसके ऊपर, हम उस लाइट को जब कंसंट्रेट करते हैं और साथ ही साथ जो आवश्यक परहेज होता है वो सब करते हैं, तो देखा गया है वो रिजल्ट बहुत तेजी से अपने में मिलता है। तो ये देखो मन के विचारों का, स्वस्थिति का, ये बाहर परिस्थिति है। जमीन में बीज बोते हैं वो भी तो बाहर की प्रकृति है, ये शरीर भी बाहर की 5 तत्वों से ही तो बना हुआ है। तो इस रीति से स्वस्थिति द्वारा हम कितना कितना परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करते चले, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो बाबा का साकार, बाबा का एक ये देखा, और क्या देखा बाबा का, बाबा का देखो अंतिम 18 जनवरी की मुरली, हम सुन रहे थे 18 जनवरी की मुरली में सम्मुख, हमारा सौभाग्य उस दिन बाबा के सामने ही थे, हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चला रहे थे, हम भी सामने बैठे हुए थे, बाबा क्लास में आए। उस दिन बाबा ने क्लास जल्दी कराई, रोज क्लास तो हमेशा भोजन के बाद लगभग 8:45 बजे होती है रात्रि क्लास, लेकिन उस दिन बाबा ने पहले से ही अनाउंस कर दिया बस भाई को बुला के कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा। तो उसने भी बाहर घंटा एक रखा रहता था, वो बजा के सबको इन्फॉर्म कर दिया कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएंगे और 7:30 बजे ही जैसे सब भोजन वगैरह करके क्लास में आ गए। बाबा आए और बस बाबा का स्वरूप वही फरिश्ता स्वरूप जैसा अंतिम दिन था। और वो बाबा ने जो मुरली चलाई, उस मुरली में एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं। और ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंचेंगे तो क्या स्थिति होगी, बिल्कुल हमारी ऐसी स्थिति होगी कि जो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। एक बार भी बाबा को कोई खांसी नहीं आई पूरी मुरली में, ये कितना वंडर है। दूसरी बात, उन दिनों में दो दिन में हमने क्या महसूस किया, पहले जब भी बाबा से 1961-62 के बाद बाबा से अनेक बार मिलना हुआ था, होता था, कई बार पार्टी में आते थे, मिलते थे, बाबा समय देते थे, तो शुरू में तो बाबा समय देते थे, हालचाल पूछते थे, फिर हमने देखा लगभग 1966-67 में जब बाबा और कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंचते जा रहे थे, बाबा को कोई भी हालचाल सुनाते थे, एक दो लाइन सुन के बाबा उस बात को पूरी कर लेते, हाँ बच्चे बाबा समझ गया, अरे बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, नहीं नहीं बच्चे तुमने ये बताया ना ऐसा ऐसा, और बाबा पूरी बात को समझ करके समाधान दे देता था। लेकिन 17-18 जनवरी को हमने क्या देखा, गौर से सुनने की बात है कि हम बाबा के पास सम्मुख गए, उस समय हम आसाम में बहुत दूर पोस्टेड थे और वहां से 17 जनवरी की सुबह आ गए थे, उधर क्लास भी कराते थे, सेवा भी, खुद भोजन भी बनाना, और इस कारण से वहां पर बहुत बिजी रहते थे। तो सोचा बाबा से ये भी पूछेंगे, ये भी उन्नति की बात, सेवा की बात आदि आदि, लेकिन जब भी बाबा के सम्मुख जाते थे बस बाबा जरा सा दृष्टि दी, हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा कहते थे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ये ऐसा कर लो ऐसा हो जाए, यानी कि एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा 6-7 बार हुआ दो दिन के अंदर, बाबा के से कई बार मिलने का मौका हुआ, बस बाबा के सम्मुख जाए, कोई भी चाहे स्व सेवा का विषय हो, बाहर का विषय हो, कोई भी अपना उन्नति का विषय हो, बस ये है कौन सा लक्षण, मन जीते जगत जीत का, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जैसे कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसीलिए गीता में भी कह दिया है मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। हमारे मन की ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें हमारा एक भी संकल्प नहीं होगा, तो हम दूसरे को के संकल्पों को तुरंत ही पढ़ लेंगे और दूसरे के संकल्प को पढ़ के तुरंत ही उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अभी यही पाठ चलना है और बाबा का अंतिम दिनों में हमने यही पाठ देखा, दो दिन में तो ये देखा ही देखा, लेकिन 18 जनवरी की रात्रि को सामने हम बैठे हुए क्लास सुन रहे थे, सुनते सुनते हमारे मन में एकदम एक संकल्प आया कि बस क्या ही अच्छा हो बाबा कुछ हमारे लिए व्यक्तिगत रीति से मुरली में कुछ बोल दे, बस व्यक्तिगत रीति से, मुरली जनरल तो चलती है लेकिन व्यक्तिगत, और वो हमारे मन में संकल्प ही उठा। अब भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, भक्त के मन में संकल्प होता है, इष्ट देव जो होता है उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। भक्त की इच्छा होती है भगवान का दीदार हो, भगवान का दीदार होता है और बस भगवान क्या पूछते कहते हैं उसे, हा? जो तुम्हारी इच्छा है वरदान मांग लो। भक्त कोई भी वरदान मांगता है, चाहे मुंह से मांगे चाहे हृदय से मांगे, भगवान के मुंह से क्या निकलता है, एक ही बात बस, क्या निकलती है, हाँ, जिससे कि जो वरदान वो हो। और लेकिन यही चीज हमने 18 जनवरी को अनुभव की, मन में संकल्प आया, तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा और बाबा ने तुरंत ही नाम लेकर के एकदम बस 4-5 महावाक्य उच्चार दिए। देखो ये बच्चा है, मोहन है, बहुत मीठा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, आदि आदि जो भगवान की प्रेरणा थी बाबा की, संकल्प हमें आया एक सेकंड के लिए बाबा हमारी उन्नति के कोई महावाक्य और बाबा तक पहुंचा। अब यही पार्ट बाबा चाहता है हम सब भी दुनिया के सामने, मास्टर ब्रह्मा है तो ब्रह्मा का शरीर तो अब रहा नहीं, है नहीं शरीर दे, तो हम सब बाबा कहता है बाप समान बन के दुनिया की इच्छाओं को पूर्ण। अभी ऐसा समय आएगा दुनिया की बहुत अशांत दुखी आत्माएं आएंगी, हम सबको उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना है, इसलिए हमारी स्थिति ये हो। और ये कब होगी, जैसे पानी होता है ना, पानी में अगर बिल्कुल निर्मल होगा, कोई लहरें नहीं होंगी, हम अपनी छवि देख सकते हैं, हमारी सूरत देख सकते हैं, लेकिन पानी में एक छोटा सा कंकड़ भी डाल दो, लहरें पैदा होंगी तो हमें अपनी छवि स्पष्ट दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। ऐसी हमारे अपने मन में संकल्पों की लहरें अगर नहीं होंगी, भले बाबा कहता है अभी बच्चों में विकारी संकल्प नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प तो है ना, अपने लिए, दूसरे के लिए, परिस्थिति के लिए, और तान मान धन किसी से भी संबंधित व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं। तो बाबा कहता है संकल्प व्यर्थ भी ना हो, और जब ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा, दुनिया की जो भी आत्माएं अपनी इच्छा लेकर आएंगी, हमारे द्वारा उनकी उन इच्छाओं को शिव बाबा पूरा कराएगा, क्योंकि साक्षात्कार की चाबी तो बाबा के पास ही है। तो कोई आत्मा श्री कृष्ण की साक्षात्कार की इच्छा लेके आई, कोई राम की, कोई हनुमान की, कोई देवी की, आदि आदि अलग अलग, हम एक ही होंगे। लेकिन हमारे मन में अगर व्यर्थ संकल्प को इच्छा नहीं होगी, तो हम अपनी उस महान स्वस्थिति के द्वारा अनेकों आत्माओं के इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे, और इस प्रकार वो इच्छा आत्माएं अपनी इच्छाओं की तृप्ति का अनुभव करके बस उनके मुंह से यही निकलेगा, हाँ जो बाबा चाहता है। क्या चाहता है बाबा, मेरा बाबा आ गया। केवल हमारे मुंह से नहीं, भले वो भगवान कहते हैं मेरा भगवान, मेरा परमात्मा, बस सबके मुंह से, क्योंकि जो भी इच्छा लेके आएंगे, अपनी इच्छाओं की तृप्ति का अनुभव करेंगे, तो उन सबके मुंह से भी निकलेगा। एक तो ये हम अपने संकल्पों के ऊपर ये विजय प्राप्त करते चले, स्वस्थिति हमारी इतनी मजबूत होती जाए, जो परिस्थितियों पर कोई भी परिस्थिति आए विजय। बाबा को उस दिन देखा, बाबा ने मुरली चलाई, और उसके बाद बाबा मुरली चला के 18 जनवरी हिस्ट्री हॉल के बाहर गए, पहले एक कदम आगे बढ़ाया, फिर बाबा दृष्टि देते रहे, फिर सबको दृष्टि देके फिर बाबा बाहर गए, फिर हरेक को, बस योग के द्वारा बाबा ने उस दिन एक एक बच्चे को अनुभव कराया। क्यों? क्योंकि बाबा को तो मालूम था, शिव बाबा को, कि आज इस साकार तन के द्वारा मेरा ये अंतिम मिलन हो रहा है, इसीलिए बस वो अंतिम मिलन का संपूर्ण आनंद लेते हुए और देते हुए बस बाबा दरवाजे के पास जाके बाबा ने कहा, क्या अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये इस बात का सूचक है, कौन सा, हाँ, इच्छा मृत्यु का भी। बस पहले से हमें आभास हो जाए जब हम कर्मातीत अवस्था के निकल, हाँ बाबा अब मैं ये शरीर छोड़ के आत्मा आपकी गोदी में आ रही हूँ। बाबा को भी जैसे आभास था कि हाँ ये साकार मिलन मेरा पूरा हुआ, अब बस इसी ने बाबा के मुंह से शब्द निकले, अच्छा बाबा विदा लेता है, छुट्टी लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी भी नहीं बोले, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग ये तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन ये शब्द बोल के बाबा अपने कमरे में गए और बस बाबा ने बिल्कुल दादी जी के हाथ में हाथ शक्तियों की विल करते हुए देह त्याग कर दिया। तो ये सब तो अभी तक हमने सुने माया जीत के किस प्रकार से बाबा ने स्वस्थिति को मजबूत किया, माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त करते हुए, लेकिन आश्चर्य की बात तो अंतिम तीन दिनों में देखी। 18 जनवरी के रात्रि को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 जनवरी को शरीर रखा रहा रात्रि भर, 19 को सारा दिन, 19 की रात्रि, 20 का सारा दिन, 20 तारीख की रात्रि, 21 तारीख को भी दोपहर के बाद बाबा का अग्नि संस्कार किया गया। हम तो वहां पर थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा और बाबा के इस अग्नि संस्कार में स्नान आदि कराने में देखा बाबा का शरीर बिल्कुल जैसे वैसा ही फ्लेक्सिबल था। नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो शरीर थोड़ा अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। बाबा के शरीर में वो ही जैसे चमकता हुआ शरीर, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, इतना 65-70 घंटे तक शरीर रखा रहा। हमें मालूम है कि कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई भी केमिकल नहीं लगाया गया, कुछ नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही गोरा चमकता हुआ लगता था हमेशा की तरह। बाबा जैसे खड़े होंगे और कहेंगे वहां पसार के, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, और वैसे ही बिल्कुल शरीर में वैसे फ्लेक्सिबल। ये है प्रकृति जीत का लक्षण, पांच तत्वों के ऊपर बाबा की विजय का लक्षण। पांच तत्वों के बने शरीर के ऊपर भी बाबा ने कितनी विजय प्राप्त कर ली थी कि आत्मा शरीर छोड़ के भी चली गई तो भी इन पांच तत्वों ने इतने घंटे तक, जो डॉक्टरों की पूरा फिलॉसफी है कि शरीर अकड़ जाता है, दुर्गंध आ जाती है, काला पड़ जाता है, कुछ भी नहीं। ये प्रकृति जीत, ऐसा हम बच्चों को भी बनना है, बाबा भी हम बच्चों से चाहता है। कैसे बनेंगे ये प्रकृति जीत? प्रकृति को रोज तो हम दान दें, इसीलिए बाबा कहता है रोज प्रकृति के तत्वों को भी दान दो, शुभ भावना का, शुभ कामना का, लेकिन एक एक प्रकृति का गुण अवश्य धारण करो। और तो प्रकृति को हम जब अपना मित्र बना लेंगे तो प्रकृति कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। मित्र मित्र के प्राण नहीं लेता। मानो जल है, हा? जल में कौन सा सबसे बड़ा गुण है? जल में गुण है फ्लेक्सिबिलिटी का, एडजस्टमेंट का। जल को जिस चीज में लो उसमें एडजस्ट हो जाता है। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, थाली में लो, थाली में, चम्मच में लो, चम्मच में सेट हो जाएगा। एडजस्टमेंट का गुण है, फ्लेक्सिबिलिटी का। ऐसी मैं भी अपनी नेचर ऐसी बना लूं, स्वभाव ऐसा बना लूं कि जल की तरह हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सके। ऐसा न हो कि इनके साथ तो एडजस्ट होना बहुत आसान है, इनके साथ भी बहुत मुश्किल है। नहीं, हमारी नेचर इतनी फ्लेक्सिबल हो हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सके तो क्या होगा? इसका मतलब जल को हमने अपना मित्र बना लिया, जल जैसा गुण धारण कर लिया, तो अंत में जल चाहे कितने भी विनाश का कारण क्यों न बने, जल के द्वारा सुनामी के रूप में, बाढ़ के रूप में, उत्तराखंड में इतना पानी हुआ, बहुतों के प्राण ले लिए, लेकिन अगर जल का कम से कम एक गुण, अनेक गुण होते हैं, शीतलता का गुण है, आगे बढ़ने का, वो मैं समय के अभाव में नहीं बता रहा हूं, लेकिन कम से कम एक गुण भी धारण कर लिया तो जल अंत समय में हमें कठिनाई में से निकाल करके ले जाएगा, हमारी मृत्यु का, दुख का, अशांति का कारण नहीं बन सकता। इसी तरह पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? धरती का, धरती है दाता, धरती हमेशा देती है। आप एक बीज बो, पेड़ निकल आएगा और हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। दाता है धरती। ऐसे ही हम भी सदा दाता रहे। हमारे दर पर कोई भी आए, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है। प्रेम दें, स्नेह दें, सहयोग दें, सद्भावना दें, शुभ भावना, शुभ का, इनमें तो कोई खर्च होता ही नहीं है। हर आत्मा को ये महसूस होना चाहिए कि ये मेरे हैं। ब्रह्मा बाबा से सबको ये महसूस होता था, बाबा मेरा है, जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। ऐसे ही सृष्टि के एक एक आत्मा को ये लगना चाहिए, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कि हाँ ये आत्मा से जितना हमें स्नेह प्यार रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलता है, ये आत्मा जितना हमें स्नेह देती है उतना दूसरे किसी को नहीं। तो इस तरह धरती का गुण अगर हमने दातापन का दे दिया होगा, सहनशीलता भी धारण करे लेकिन दातापन का गुण होगा, तो धरती में जितना अर्थ को एकाएगा अंत में विनाश होगा। धरती हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी, न तकलीफ का कारण बनेगी, क्योंकि धरती को हमने अपना मित्र बना लिया। ऐसे वायु का गुण क्या है सबसे बड़ा? वायु हल्की होती है, हर चीज को ऊपर उठाती है। तो ऐसे ही हम हर परिस्थिति में हल्के रहें, भारीपन न हो। कई बार क्या होता है, जब भारीपन आ जाता है किसी न किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार के कारण, परिस्थिति के कारण, प्रॉब्लम समस्या के कारण, तो कई बार हम भारी हो जाते हैं, ना खाने का अच्छा लगता है, बोलने का अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल अलग किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं। ये है भारीपन के निशान। नहीं, बाबा ने कहा हर परिस्थिति में हल्के रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तो परिस्थितियां तो आएंगी, बाबा ने कहा उनका काम है आना और हमारा काम है भगाना। तो इस कारण से क्या होगा, वायु की तरह हल्के रहेंगे तो चाहे अंत समय में जितना भी साइक्लोन आएगा, तूफान आएगा, बहुत ऐसी परिस्थिति होगी, लेकिन वो हमारी मृत्यु दुख अशांति का कारण नहीं बनेगा। ऐसी आकाश का सबसे बड़ा गुण क्या है? आकाश विशाल है, पूरा एक आकाश है, और आकाश में सैटेलाइट वैज्ञानिक लोग छोड़ते हैं, उसके कारण ही हम किसी से बात कर सकते हैं। बस सैटेलाइट होते हैं, मोबाइल से बात करो, टीवी के द्वारा कहीं का भी दृश्य देख सकते हैं, रेडियो के द्वारा सुन सकते हैं, दूर दूर के दुनिया के कोने की बात हम वहां तक पहुंचा सकते हैं, वहां से यहां तक ला सकते हैं। ऐसे ही बाबा चाहता है आप बच्चों का दिल भी बहुत विशाल हो। दिल के अंदर कोई कमी कमजोरी किसी की भी हम अपने अंदर रखें नहीं, आकाश की तरह विशाल रहे। उससे उसका मापदंड क्या है? उसका मापदंड यही है कि हमारा किसी से ज्यादा प्रेम और किसी से कम प्रेम, घृणा, वो सब नहीं होगी। क्योंकि कई बार किसी से ज्यादा स्नेह होता है, ज्यादा देर तक बात करते हैं क्लास के बाद भी आपस में मिलके, और जिनसे इतना स्नेह प्यार नहीं होगा वो सामने से भी आ रहा होगा, उससे नजर बचा के चले जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, और हमारे मन की स्थिति ऐसी होगी दूर से ही उनसे विदा लेना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। हर आत्मा दूसरा अगर नहीं भी बोल रहा है, आप बोल के उसे ओम शांति, गुड मॉर्निंग भाई जी, गुड मॉर्निंग बहन जी, जहां पर भी ये अगर दीवार अंदर की खड़ी हो गई है, इस दीवार को हम खत्म करने का प्रयास करें। और हर आत्मा से हमारा जितना कम्युनिकेशन रहेगा, बातचीत रहेगी, उतना उतना बड़ा हम विश्व महाराजन बनेंगे। विश्व महाराजन वही बनता है जिसका विश्व की हर आत्मा के साथ संपर्क हो, संबंध हो। इसीलिए दादियां बोलती हैं, बाबा कहते हैं अमृत वेला उठ करके विश्व की सर्व आत्माओं को योगदान करें, उनके साथ उनको शक्ति का दान दें, वार्तालाप करें। यह आकाश का। और पांचवा अंतिम कौन सा गुण है? प्रकृति में सूर्य है, अग्नि देवता, अग्नि सूर्य के रूप में है। तो सूर्य का सबसे, अग्नि का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? अग्नि का गुण है रूप बदल देने का। अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही बस हमारा भी बाबा ने कहा ज्वालामुखी स्वरूप, अब उस स्वरूप की आवश्यकता है जिससे बहुत अशांत आत्मा आएंगी, उनका स्वरूप बदल जाए। बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति की लहरों का अनुभव करती हुई चली जाए। उसका स्वरूप हम बदलने की क्षमता रखते हैं। और ये ब्रह्मा बाबा में देखा, दादियों में भी देखा, जो दादियों के सम्मुख जाते हैं अंदर की कोई बात होती है सब प्रश्नों का हल सब मिल जाता है। इस रीति से ये प्रकृति जीत बनने का लक्षण है, इसीलिए स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय यही हो सकती है। माया जीत के लिए तो हम सब लोग ज्ञान योग धारणा सेवा कर ही रहे हैं, उससे हम लोग धीरे धीरे अपने स्वस्थ स्थिति मजबूत कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति जीत बनने का यही है कि प्रकृति के साथ हम अपना तालमेल बिठाते चले, क्योंकि ये शरीर प्रकृति से ही बना है और सबसे हमारा निकट का साथी है ये शरीर। सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक इन्हीं पांच तत्वों का तो भले भिन्न भिन्न नाम रूप होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न नाम रूप से शरीर तो हमें मिलेगा ही ना, उसी के द्वारा ही तो पार्ट बजाएंगे। इसलिए हमारा अब ऐसा होना चाहिए कि बस प्रकृति जीत भी बने, स्वजीत इंद्रिय जीत भी माया जीत, तो स्वस्थिति के द्वारा हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और बाबा के जो चाहना है हम बच्चों से उस चाहना को पूर्ण कर सकें। ओम शांति, ओम शांति।